ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई। हरियाणा से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी की मांग को लेकर जल मंत्री आतिशी का अनशन तबियत बिगड़ने के कारण समाप्त। दिल्ली जल संकट को लेकर सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू और तेज वर्षा तथा स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 1 जुलाई से सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू करेगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर आज रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाया जिसमें श्री केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने निदेशालय के इन आरोपों से सहमति जताई कि निचली अदालत ने जांच एजेंसी को ठीक से नहीं सुना। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को कल स्थगित कर दिया था और मामले की सुनवाई बुधवार को तय की थी। श्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मई में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी थी। वे 2 जून को जेल लौटे। दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आज जमानत याचिका रद्द किए जाने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि वह न्यायालय के फैसले से असहमत हैं। पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाला फर्जी है जो भाजपा की एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने कहा कि पार्टी की कानूनी टीम आगे के निर्णयों पर चर्चा कर रही है।
पूरा शराब घोटाला फर्जी है, भाजपा कार्यालय में लिखा गया है। जब ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ते हैं तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को एड्रेस किया है, कुछ इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के जो बात ऑर्डर में लिखी गई है, और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि कोई भी एविडेंस नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी को इस तथाकथित शराब घोटाले से जोड़ता हो। 2 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 54 की रिकवरी नहीं हुई है और ये बात भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में बहुत साफ लिखी हुई है। अब आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने तो बिना ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को देखे ही दे दिया था, तो उनको शायद अपनी बात रखनी पड़ गई। हम इस फैसले से असहमत हैं। डेफिनेटली हमारी लीगल टीम इस पर अभी विचार कर रही है और जो भी एडवाइजेबल स्टेप होगा हम उसको लेंगे।
हरियाणा सरकार से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी की मांग को लेकर बीते 5 दिनों से अनशन पर बैठी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की तबियत बिगड़ने से उन्हें लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उनका उपचार चल रहा है। जल मंत्री की तबियत बिगड़ने से अनशन पर विराम लग गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया है कि आतिशी का रक्तचाप और मधुमेह का स्तर गिरकर 36 पर आ गया है। डॉक्टरों द्वारा उनकी जान को खतरा बताने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
कल रात में अचानक उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। पहले एलएनजेपी के डॉक्टरों की टीम ने शाम को देखा, फिर अपोलो में उनका ब्लड सैंपल चेक कराया गया और उनका जो अंतिम जो ब्लड शुगर रिपोर्ट आई वो 36 आई और रात को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास उनको एलएनजेपी में एडमिट कराया गया।
उधर जल मंत्री आतिशी के अनशन को भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने नाटक बताया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो दिल्ली को 24 घंटे स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। श्री बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तब दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे पर था, लेकिन आज दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है।
2018 में दिल्ली में जो पानी की जो बर्बादी थी, जो चोरी थी 40% थी, और 2023 और 2024 में एज पर रिपोर्ट ऑफ डेली गवर्नमेंट में बढ़कर 52% होगी। आती सी नदी के जो पानी की चोरी हो रही है, जो टैंकर माफिया पानी की चोरी कर रहा है, यदि ये चोरी रोक दी जाए तो दिल्ली को और 52% पानी यदि मिल जाएगा तो दिल्ली में पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए आरटीसी को अरविंद केजरीवाल एक मिनट के लिए भी अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।
पानी की किल्लत पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार जनता को राहत देने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। इस बीच दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पानी की समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन की लीकेज, टैंकर माफियाओं पर लगाम लगाने और लोगों को समय से पानी मिलना सुनिश्चित करें। श्री चंदोलिया ने किराड़ी इलाके में जल संरक्षण केंद्र बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र भी लिखा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश के बावजूद जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों में मयूर विहार फेज 1, ओखला, गीता कॉलोनी, वसंत विहार, पटेल नगर, संजय कॉलोनी, मेहरोली, विकासपुरी, मोती नगर, छतरपुर, संजय कॉलोनी, वसंत कुंज, चाणक्यपुरी, कृष्णा नगर और नरेला शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ परिषद की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने गन्ने के टिकाऊ और विविध उत्पादन के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया है। दिल्ली में बैठक के दौरान एक कार्यशाला में श्री जोशी ने कहा कि किसी योजना का कार्यान्वयन करते हुए उपभोक्ता, किसानों और उद्योग के हितों में संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
श्री जोशी ने कार्यशाला के सदस्यों को एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने कम जल के प्रयोग और अधिकतम उपयोग वाली फसलों का उत्पादन करने का आग्रह किया। श्री जोशी ने कहा कि स्वच्छ ईंधन उत्पादित करने की क्षमता के कारण गन्ने का मूल्य एक नई ऊंचाई तक पहुंच चुका है। मीडिया से बातचीत में श्री जोशी ने आशा व्यक्त की कि भारत अंतर्राष्ट्रीय गन्ना संगठन की बैठक की मेजबानी 12 वर्षों के बाद कर रहा है। इस बैठक में किसानों के कल्याण, उपभोक्ता कल्याण और जल संरक्षण पर नए विचारों पर मंथन किया जाएगा। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के एक स्टोर रूम में आज सुबह आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग की तत्परता से आग में फंसी एक महिला को सकुशल बचा लिया गया है। हादसे में जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं नजफगढ़ क्षेत्र में भी कल देर रात एक घर में बैटरी इन्वर्टर फटने से आग लग गई। इस बीच धुएं होने और दम घुटने से 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली भाजपा की महामंत्री और पश्चिम दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सांसद ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बाल चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ हरीश चेलानी ने नीट यूजी परीक्षा के संबंध में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों की सराहना की है। श्री चेलानी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
Ministry of Education has constituted a high-level committee of experts under the chairmanship of Dr. K. Radhakrishnan to ensure transparent, smooth and fair conduct of examinations. The committee will make recommendations on reforms in mechanism of examination process, improvement in data security protocols and structure and functioning of National Testing Agency. Professional bodies have welcomed the steps taken by the government.
भारतीय चिकित्सा संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉ. शरद कुमार अग्रवाल ने नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी और कदाचार के संबंध में सक्रिय कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य जून से अगस्त के महीनों के दौरान तेज वर्षा और स्वास्थ्य से संबंधित उत्पन्न जोखिमों से निपटने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की तैयारियों को बढ़ाना है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरिया रोको अभियान के अनुरूप है। ये पहल मॉनसून के मौसम के दौरान स्वच्छता और बीमारियों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और विभागों के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास करती है। दिल्ली पुलिस द्वारा कल राजधानी के झरौदा कलां स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में कुल 1351 हेड कांस्टेबल और अन्य पुलिसकर्मी शामिल होंगे। इस दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त कानून और व्यवस्था दीपेंद्र पाठक पासिंग आउट परेड से सलामी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 के आपातकाल का विरोध करने वाले महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आज कहा कि ये दिन याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सभी लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना की और देश को जेल बना दिया। श्री मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल लगाया उन्हें संविधान के प्रति प्रेम जताने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने रेलवे अधिकारियों के साथ आज उत्तर रेलवे की कार्य प्रगति को लेकर नई दिल्ली में रेलवे मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में मॉनसून मौसम के दौरान रेलगाड़ियों के सुरक्षित और निर्धारित समय से परिचालन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। श्री चौधरी ने बताया कि मॉनसून लगभग आने वाला है और इस बीच तेज वर्षा और खराब मौसम की स्थिति से निपटने के लिए रेलवे विशेष तैयारियां कर रहा है। महाप्रबंधक ने सभी संबंधित विभागों को मॉनसून से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे, उपकरणों और रेलगाड़ियों के सुचारू परिचालन की तैयारियों का आकलन करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली में अलग अलग इलाकों में आज सुबह हल्की वर्षा होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहते हुए 39.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहते हुए 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ रहने और कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई। दिल्ली जल संकट को लेकर सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। हरियाणा से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी की मांग को लेकर जल मंत्री आतिशी का अनशन तबियत बिगड़ने के कारण समाप्त। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। और तेज वर्षा तथा स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 1 जुलाई से सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।